رہ گئی دنیا تو علم و نمل الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد. خوب جان لو، علم حاصل کرو تو پتہ لگتا ہے، علم و علم کہ یہ دنیا کی زندگی اس کے سوا کچھ نہیں، ایک کھیل. بچپن میں بچہ کھیلتا ہے تو بچپن میں یہ کھیل ہوتی ہے، پھر دل لگی، 12-14 سال کی عمر آئی تو پھر لحف شامل ہو گیا، لڑکے لڑکیوں کی باتیں، خیالات آنے لگتے ہیں، جذبات ابھرتے ہیں، پھر ظاہری ٹیپ ٹاپ، یہ 20s میں ہوتا ہے، ہر چیز خوبصورت، کپڑے اچھے، گھر اچھا، شادی ہوتی ہے تو دلہن اچھی، زیور اچھے، مکان اچھا، گاڑی سجنی، دلہن کا کمرہ، پھر گھر سجاتے ہیں، سب 20 سے 30 سال میں بندہ ٹیپ ٹاپ پہ رہتا ہے، اور پھر تمہارا آپس میں ایک دوسرے پہ فخر جتانا، یہ 30s کے بعد ہوتا ہے. پھر کہتے ہیں میرے میاں کی تو اتنی کمائی ہے، میرے گھر تو اتنی گاڑیاں ہیں، آپ کی کتنی ہے، میرے بچے تو ادھر. اور جب 40 سے اوپر آتے ہیں، بچے جوان ہوئے، تو مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش. میرا بچہ تو آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، آپ کے کہاں جاتے ہیں؟ اچھا اچھا اسی شہر میں، اوکے. داخلہ نہیں ملا ہوگا نا باہر کہیں، یہ سوچ. پھر فخر، کتنے قلعے میری زمین. وہ جو 50-60 سال کے بابے بیچارے بابیاں بیٹھ کے سارا دن دفتر کھول کے کتابوں کا بیٹھے رہتے ہیں، کتنے قلعے، ادھر سے کتنی زمین آئی، اور کدھر کتنا جانا ہے، اور ادھر سے کیا آنا ہے. پھر 50 جب کچھ کر نہیں سکتے تو اپنی دولتوں کو کھول کے دیکھتے ہیں، اور پڑھے لکھے لوگ کمپیوٹر کھول کے وہ ڈالر کا ریٹ چیک کرتے رہتے ہیں، اب اتنا ہو گیا، اب اتنا کم ہو گیا. اور اس کے بعد پھر دنیا سے جانے کا وقت آتا ہے. یہ ہے میری آپ کی زندگی کے اسٹیپس. اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بارش ہو گئی، آسمان سے بارش آئی، تو اس سے پیدا ہونے والی نباتات کو دیکھ کر کاشتکار خوش ہو گئے. یہ بچے ہونے کی طرف اشارہ ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے، ماں باپ بڑے خوش ہوتے ہیں، پھر وہی کھیتی پک جاتی ہے، بچہ جوان ہو گیا، ماں کہتی ہے بس اب دن پھر جائیں گے، اب یہ بچہ ڈاکٹر بن گیا، اب یہ پائلٹ بن گیا. لیکن تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد ہو گئی، یعنی جوانی میں ڈیتھ ہو گئی. چلے جوانی بھی گزری گئی پانی کی طرح، تو بڑھاپے کی زردی آ گئی، پھر وہ بھوس بن کر رہ جاتی ہے. یہ بوڑھوں کی جھریاں، بڑھاپے میں بندہ بھوسا بن جاتا ہے، کچھ نہیں سجتا، کچھ نہیں ہضم ہوتا. لوگ بھی کہتے ہیں اماں جی کو کیا ضرورت یہاں آنے کی، ان کے بیٹھا تو ان سے جاتا نہیں ہے، یہ کیا کھانے کی بات ہے، کھانے کے بعد ساری رات تو یہ جاگتی رہیں گی. پھر لوگ یہ باتیں کرتے ہیں، اور غیر مخصوص طریقے سے لوگوں کی نظریں لگ جاتی ہیں، اب یہ کب جائیں گے، جانے میں کتنے دن ہیں. نرسیں آ کے چیک کرتی ہیں، ابھی زندہ ہے، ابھی موجود ہے. یہ ہے دنیا میری آپ کی. بہت بھی جئیں گے نا تو بھوس بن کے جائیں گے. پھر لوگ کہیں گے بس اللہ رحم کر دے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا اللہ بڑوں پہ رحم کر دے، مطلب یہ تھا کہ اللہ کو لے جائے. اب ہم بھی کافی تھک گئے ہیں، جنت تو ہم نے کما لی ہے، اور کیا کریں. اس کے برعکس آخرت وہ جگہ ہے جہاں سخت عذاب بھی ہے اور اللہ کی مغفرت بھی ہے، اور اس کی رضامندی، خوشنودی بھی ہے. رضوان اللہ مجھے آپ کو دے دے، اللہ ہم سے راضی ہو جا. رہ گئی دنیا تو پھر یقین دلایا جا رہا ہے، وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. یہ دنیا کی زندگی دھوکے کے سامان کے سوا کچھ نہیں. دھوکے کا سامان ہے. اگر ٹائم ہوتا نا میں آپ کو ایک بڑا پیارا آرٹیکل پڑھ کے سناتی، بہت ہی خوبصورت ہے. لیکن یہ دنیا اس نئی شرٹ کی طرح ہے، جب کسی اسٹور میں پڑی ہوتی ہے نا تو رال ٹپکتی ہے، پھر بڑے پیار سے اس کو خرید کے لاتے ہیں، پھر اپنے وارڈروب میں لگاتے ہیں، پھر کہیں جاتے ہوئے اس کو پہنتے ہیں، کیسی لگ رہی ہوں، دیکھ رہے ہیں، آنکھیں ڈھونڈتے ہیں لوگوں کی، ترستے ہیں کان کے کوئی ایک تعریف کا جملہ تو بولے. پھر 2-4 بار پہنا، پھر پہنا، پھر پہنا، پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ پرانی ہو جاتی ہے، اس سے زیادہ اور اچھی آتی، الماری میں اور چیزوں کی جگہ نہیں ہوتی. پھر کہتے ہیں ان کو نکال دیتے ہیں، پھر وہ ہمارے نوکر کے پاس آتی، پھر ہمارا ڈرائیور یا ہماری میڈ پہنتی ہے، پھر وہ میڈ پہنتی پہنتی ایک دن گھر کا پوچھا بن جاتی ہے وہی شرٹ. یہ ہے دنیا. پھر کہتے ہیں یہ وہی شرٹ تھی جس کو میں اتنے ارمانوں سے خرید کے لائی تھی، آج پوچھا اور ایک دن جب ٹریش میں اس کو دیکھا کیا ہوا، اب یہ پوچھے کے بھی قابل نہیں رہی، اب موپ بھی نہیں اس سے بنے گا کیونکہ اس میں جراثیم آ گئے. وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. کرو کیا پھر؟ اب سورت کا اینڈ. خون گرم کیا ہی سورت نے آپ کا میرا، تو کیا کرے اس گرمی سے؟ سابقوا الی مغفرت من ربکم. دوڑو، سبقت کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، اچھے لوگوں کو کام کرتا دیکھ کر رول ماڈل بناؤ، میں نے ان سے اچھا کرنا ہے. حدیث میں بھی خلاصہ موجود ہے کہ نیکیوں میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو اور گناہوں میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو. हमारा मामला अल्लाह माफ़ करे इससे अपोजिट ही होता है। अपने रब की मगफरत और उस जन्नत की तरफ जिसकी वसत आसमानों ज़मीन जैसी है और जो तैयार की गई उन लोगों के लिए जो अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान लाए हों। और असल जिसको ये भागने का मौका मिल गया ना, ये है ज़ालिक फ़ज़लुल्लाहि युतीहि मन यशा, ये अल्लाह का फ़जल है, वो जिस पे चाहता कर देता है। क्या फ़जल है भला? नेकियों में भाग दौड़। साबिकुलु, हम किसको फ़जल कहते हैं? हाज़ा मिन फ़ज़्ल रब्बी, वो क्या होता है? घर के ऊपर औलाद, हाज़ा मेरे ऊपर अल्लाह का बड़ा फ़जल है, बड़ी अच्छी सेल है, ठीक है, हलाल है तो कोई हर्ज नहीं है। असल फ़जल ये है, कभी रश्क आता है हमें ऐसे लोगों पे कि जिनकी ज़िंदगी का मकसद ही वही है कि हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। बचपन से हमारे स्कूलों में ये दुआ असम्बली में पढ़ाई जाती थी, कभी नहीं समझ, एक टीचर ने कभी उन 10 साल जो स्कूल के थे एक दिन आके स्टेज पे नहीं बताया कि आओ ज़रा अल्लामा इकबाल की इस दुआ का तुम्हें तर्जुमा भी समझाऊँ। किस दिन समझ आई? जब कुरान पढ़ा, जब कुरान का नूर आया। ये होती है लब पे आती है दुआ तमन्ना बन के मेरी, हम तो कुछ और ही सुनते आए। इतना फरसूदा निज़ाम तालीम है आज हमारे बच्चों के लिए, अल्लाह ताला हमारी आंखें खोल दें। और ये कुरान की तालीम हमने रखी हुई है, किसी पुराने दौर में पढ़ेंगे, नाबीना पढ़ लें, 4 साल स्कूल में फ़ेल हो गए तो, या फिर सब कुछ कर करा के जब मैं फारिग होंगी ना फिर मैं कुरान का कोर्स ज़रूर करूँगी। चलें ठीक है, अभी भी कर लेते हैं, पार्ट टाइम कर लेते हैं, अच्छा चले देखते हैं, कुछ भी नहीं होगा, साफ बात है, बस एक हिलजुल ही रहती है। असल ये खेती तैयार तब होती है जब डेडिकेशन के साथ हैंड्स अप करके असलम तो ले रब्बिल आलमीन, पकड़े हमें जो मर्ज़ी बना लें। एक सिस्टर थी तो उन्होंने एक मौके पे अपनी एक बच्ची को पेश किया और कहने लगी क्लासेस, कहती ये मैं आपको दे रही हूँ, आप इसको तोड़ें, इसको मरोड़ें, इसको इसको अच्छा बना के मुझे दे दें, ये आप मेरी बच्ची आपके स्कूल के हवाले, कि मैं इसको ऐसा देखना चाहती हूँ जो कुरान दिखाता है, तो आधा रंग दूसरा आधा रंग दूसरा, ये भी कोई बात मज़े की नहीं आती इल्ला ये कि इब्तदाई स्टेजेस। वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्ल अज़ीम, और अल्लाह बड़े फ़ज़ल वाला है, आगे खुश रहने का राज है। पहली दफ़ा मुझे जब ये आयत जब समझ आई थी ना, अब जो आयत 22 और 23 पढ़ रही हूँ, तो जिसको कहते हैं कि मैं सरशार हो गई थी, झूम जाता है ना बंदा, हाय ये बात कुरान में, मुझे तो नहीं कभी किसी ने बताई थी। आइए आप भी सुनिए, मा साब मिन मुसीबतिन फिल अर्दी वला फी अनफुसिकुम इल्ला फी किताब मिन क़ब्ल अन नबराहा, कोई मुसीबत ऐसी नहीं जो ज़मीन में या तुम्हारे नफ्स पर नाजिल होती हो और हमने इसको पैदा करने से पहले किताब में लिखना रखा हो। कौन सी किताब? लोहे महफूज में, तकदीर के बाब में। और ये अल्लाह के लिए ज़ालिक अल्लाह ही यसीर, ये अल्लाह पे आसान है, यानी आपको मुझे जो पेश आना है ना वो लिखा हुआ है, दुआओं से बदल लें बस, और कुछ नहीं हो सकता। करो क्या? खुश रहने का राज। लिकई ला तासु वला मा फातकुम, यहाँ वन लिख लें या ब्रेकेट लगा लें, यह है पहला असूल खुशी का। ये सब कुछ इसलिए है कि ताकि जो कुछ भी नुकसान तुम्हें हो, होते हैं ना ज़िंदगी में, ज़िंदगियाँ चली जाती हैं, घर टूट जाते हैं, बच्चे मर जाते हैं, जो भी नुकसान तुमको हो इस पर तुम दिल शिकस्ता ना हो। ये इस्लाम का असूल है, गमों में डिप्रेशन में जाकर जो नेमते हैं उसको भी देखना ना छोड़ दो। और दूसरा असूल वला तफरहु बीमा आता को, और उस पे तुम फूलो नहीं, अकड़ो नहीं, किस पे? जो कुछ अल्लाह ने तुमको अता किया इस पर फूल ना जाओ, यानी खुशियों में भी ज़रा स्टॉप। कल ही सुनाइए आपको बात ना कि इट विल शेल सोन, ये भी चला ही जाएगा। ये है असल में बात, दो ही मौके हैं जब हम गुनाह करते हैं, या दुख में या खुशी में। अल्लाह कहते नहीं, कंट्रोल योर सेल्फ, खुशी को अंदर रखते हैं, ये आपकी फिर ताकत बनती है, फिर शुक्र पड़ता है। रोते थे अल्लाह के नबी, आंखों से आंसू आ जाते थे खुशी पे, हम खुशी के नाम पे हल्ला, पार्टी, फन, गैस के गुब्बारे की तरह हवा निकल जाती है। अब देखिए गैसी गुब्बारा होता है ना, उसके अंदर हवा भरी होती है, ऊपर चला जाएगा, इस छत के ऊपर जाके लग जाएगा, ठीक है, लेकिन ज़रा से उसको रपचर करें तो वहाँ से ज़मीन पर गिरेगा। तो ये जो खुशियाँ और नेमते हैं ना, इसको अपनी एनर्जी बनाओ, शुक्र का ज़रिया बनाओ, और गम को भी ताकत बनाओ कि मैंने दोनों हालों में अच्छा काम करना। और हदीस में आता है आज बलमरुल मोमिन, मोमिन का मामला बड़ा अजीब है, खुशी मिले तो शुक्र, और शुक्र का बदला जन्नत, गम मिले तो सब्र, सब्र का बदला जन्नत। तो दो दरवाजे हैं जन्नत के, एक वो और एक ये। या सब्र का दरवाज़ा या शुक्र का दरवाज़ा, दोनों खुलते जन्नत में। अल्लाह ताला में साबिर और शाकिर बना दे और फ़ख्र से बचाए, क्योंकि वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्ला मुख्तालिन फ़खूर। अल्लाह ऐसे लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करता जो अपने आप को बड़ी चीज़ समझते हैं। हम जैसा कौन, कोई हो हम जैसा तो सामने आए, ये अंदाज़ नहीं होना चाहिए। और फ़ख्र जताते हैं, और किसको नहीं अल्लाह पसंद करते? अल्लज़ीना यबखलून व यामुरूना अन्नास बिल बुख्ल, जो ख़ुद भी बुखल करते हैं और दूसरों को भी बुखल पर उकसाते हैं। यानी अगर कोई ज़रा मुट्ठी ढीली करने भी लगे ना, तो कहते हैं ज़रा ठहर दो, छोटा नोट डाल दो, चलो बाद में कर देना, चलो अभी ज़रा और देख लो। चलें, इतनी बातों के बाद वह मैं यतवल्ला फ़इन्नल्लाह, बस अगर कोई रूह गर्दानी करता है तो अल्लाह कौन है? अलग़नीयुल हमीद, बेनियाज। और तारीफ़ किया गया, यानी उसको मेरी आपकी नेकियों की, हमारी कोशिशों की ज़रूरत नहीं है। असल बात यह है, हमें अल्लाह की ज़रूरत है। लक़द अरसलना रुसुलना बिलबैयिनात, हमने अपने रसूलों को साफ साफ निशानी और हिदायत के साथ भेजा और इनके साथ किताब और मीज़ान नाजिल की, ताकि लोग इंसाफ पर कायम हो, और लोहा उतारा जिसमें बड़ा ज़ोर है और लोगों के लिए मुनाफे हैं। इसलिए किया गया कि अल्लाह को मालूम हो जाए कि मैं यंसुरुहू व रसूलहू बिलगैब। इस पे 3 सेकंड गौर करें, कौन है जो इसको देखे बग़ैर इसकी और इसके रसूलों की मदद करता है? है ज़रूरत अल्लाह को मेरी आपकी मदद की? नेवर। बट वो क्यों मौका देता है? ताकि तुम्हें कामयाब कर दे। यकीनन अल्लाह ताला बड़ी कुव्वत वाला और बड़ा ज़बरदस्त है। साथ ही बता दिया कि ये ना सोचना कि तुम मदद नहीं करोगे तो अल्लाह के काम कोई नहीं होंगे, वो तो हो ही जाने हैं, बट तुम्हारा शेयर नहीं होगा तो प्रॉफिट में तुम हिस्सेदार नहीं बनोगे। वलकद अरसलना नूहन व इब्राहिम, और हमने नूह और इब्राहिम को भेजा और इन दोनों की नस्ल में नबूवत और किताब रख दी, फिर इनकी औलाद में से किसी ने हिदायत इख्तियार की और बहुत से फासिक हो गए। यही हर दौर में होता है। कुरान पढ़ने के बाद कुछ की हिदायत का रास्ता खुल जाता है और कुछ फासिक दूर निकल गए। किस में आप देखिए कि अल्लाह के नबी ने जो उम्मत तैयार की थी, अगर सब सहाबा ही जैसे रहते तो आज ये दिन हमें देखने पड़ते जो हम देख रहे हैं। इनके बाद हमने पै दर पे यानी मुसलसल अपने रसूल भेजे, और इन सब के बाद ईसा इब्ने मरियम को मबूस किया और इनको अंजील अता किया, और जिन लोगों ने इसकी पैरवी इख्तियार की इनके दिलों में हमने तर्स और रहम डाल दिया, और रहबानियत इन्होंने खुद ईजाद कर ली। ये क्रिश्चियंस की बिदा थी रहबानियत। इस एकायत पे बड़ी डिटेल से बात होती है जब हम तफसीर करते हैं कि ये रहबानियत कहाँ से आई, लेकिन हकीकत है कि आज भी क्रिश्चियनिटी के नाम पर कुछ लोग राहिब बने हुए हैं। अल्लाह ताला कहते हैं हमने नहीं की, हमने उसे उन पर फ़र्ज़ नहीं किया था, मगर अल्लाह की खुशनुदी की तलब में उन्होंने खुद ही ये बिदत निकाल ली। फिर इसकी पाबंदी करने का जो हक था इसे अदा ना कर सके। राहिब तो बनते हैं, शादी नहीं करते, नंस बनती हैं, शादी नहीं करती, लेकिन चर्चिस में आपस में एक दूसरे से इन्वॉल्व हो जाते हैं, फिर जिस्म के तकाजे भी कहीं ना कहीं से तो पूरे करने हैं। तो ऐसी चीज़ें अपने ऊपर क्यों लें जिसको बंदा निभा ना सके? हाँ, इनमें से जो लोग ईमान लाए हुए इनका अजर हमने इनको अता किया, मगर इनमें से अक्सर फासिक हैं। ऐसे ऐसे राहिब हैं क्रिश्चियनिटी में कि जो अपने आप को भीड़ों के छज्जे में बंद कर लेते हैं और अपने आप को भीड़ों से डसवाते रहते हैं। एक ऐसा राहिब है इनका जिसने अपने आप को कीचड़ में डबो दिया, एक एक लंबा सा पिलर बना के उस पर चढ़ गया कि मरते दम तक इधर ही बैठा रहूँगा। इनका नज़रिया क्या होता है कि जितनी तकलीफ होगी ना दुनिया में उतना हमें जन्नत मिलेगी और अल्लाह हमसे खुश होगा। अल्लाह कहता है मैं तुम्हें ऐसी चीज़ों में नहीं डालता। शादी को वो गुनाह कहते हैं, ख़ुद को अज़ियतें देते हैं, फिर एक से एक बढ़कर ये राहिब बनते हैं। इसी तरह से एक इनका मैं एक दो पढ़ के सुना देती हूँ, आपको शायद इंटरेस्ट हो जाए। सिकंदरिया का सेंट मकारियस हर वक्त अपने जिस्म पर 80 पाउंड का वज़न उठाए रखता। 6 महीने तक वो एक दलदल में सोता रहा और जहरीली मक्खियाँ इसके बरहना जिस्म को काटती रहीं। इसके मुरीद सेंट यूसीबियस ने पीर से भी बढ़कर रियाजत की। वो 150 पाउंड 150 पाउंड का बोझ उठाए फिरता रहता और 3 साल तक एक खुश कुएं में पड़ा रहा। सेंट सबियस सिर्फ वो मकई खाता था जो महीना भर पानी में भीग कर बदबूदार हो जाती। सेंट बिसियारियन 40 दिन तक कांटों वाली झाड़ियों में पड़ा रहा और 40 साल तक इसने ज़मीन को पीठ तक नहीं लगाई, बिस्तर पर नहीं सोया। और सेंट पाह्यूमियस ने 15 साल और बाद कहते 50 साल ज़मीन को पीठ लगाए बगैर गुजार दिया। अल्लाह को इससे क्या मिला? ये मेहनत आप अल्लाह के दीन पर कर लें। तो याद रखिए कि इस्लाम में इस तरह के टोने टोटकों और ऐसे जंतर मंतर की कोई अहमियत नहीं है। संजीदगी से बैठ के बंदा सोचे ना कि नेकी के नाम पे भी जो काम मैं करूं, या अगर मैं अल्लाह का कुर्ब पाने के लिए अपने आप को कुछ मरहलों से भी गुजारूं, तो उसका एंडिंग रिजल्ट क्या है? जाहिदु फिल्लाही हक्का जिहादी। आप कुरान पढ़ के अपने अंदर गर्मी महसूस करें, सूरत हदीद आपको कुछ करने पे माइल कर दे, ये बेहतर है इसी सूरत को 120 बार पढ़ के सो जाने से। ये जो नेकियों का एक हमारे दिल में बोझ बन जाता है ना कि हम बहुत नेक हो गए, वो भी ठीक नहीं है। तो हर काम, नमाज है, रोज़ा है, कुरान है, या कोई आप चिल्लाकशी भी करें, उसका एंड रिज़ल्ट है कि आप लोगों के लिए मोर बेनिफिशियल बन जाएं। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ए लोगों जो ईमान लाए, अल्लाह से डरो और इसके रसूल मोहम्मद सल्लम पर ईमान लाओ। अल्लाह तुम्हें अपनी रहमत का दोहरा हिस्सा अता करेगा और तुम्हें वो नूर बख्शेगा जिसकी रोशनी में तुम चलोगे। दुआ करें अपने लिए। व यग़फ़िर लकुम, और तुम्हारे कसूर माफ़ कर देगा। अल्लाह बड़ा माफ़ करने वाला और मेहरबान है। तुमको ये रविश इख्तियार करनी चाहिए ताकि अहले किताब को मालूम हो जाए कि अल्लाह के फ़जल पर इनका कोई जारा नहीं, यानी इनकी मोनोपोली नहीं है। अल्लाह ने मुसलमानों को अब वही मुकाम दे दिया, और ये कि अल्लाह का फ़जल इसके अपने हाथ में है, जिसे चाहता है अता फरमाता है और वह बड़े फ़जल वाला है। तो ये थी सूरत हदीद। हकीकत है कि इसका हक अदा नहीं होता जब तक हम इसके मुताबिक अपने अमल को ना ढालें। थोड़ी सी तिलावत सुनते हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्ض व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। लहु मुल्कुस समावाति वल अर्ض युही व युमीत व हुवा अला कुल्ली शैइन قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير.
میرا دل چاہتا ہے کہ آپ کچھ کہیں، کوئی بات جو کسی کے دل کی سچی بات آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں؟ इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, इरादे, प्लान, नीयतें। आमीन सुब आमीन। बस दुआ करें अपने लिए भी और कोशिश करें, हिम्मत करें। देखिए ये नामुमकिन नहीं है, ये मुमकिन है, और अल्लाह ने ये खिदमत लेनी है, आज के मुसलमानों से लेनी है। सिर्फ संजीदगी की ज़रूरत है, सिर्फ संजीदगी की ज़रूरत है रियली। इसके लिए मेहनत, मशक्क़त, पूरी सूरत से अगर आप डूज़ एंड डोंट्स निकाल लेना तो बस ये आज की उम्मत को लिख के दे दें कि ये कर लो और ये ना करो, तो आप देखेंगे कि उसके बाद काम आसान होगा, फिर इंशाल्लाह अगले काम होंगे। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तूब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला खैरि खल्क़िही व असहाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमुर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।